हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज के सुबह की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त उपस्थित है। हिज ग्रेस अक्रूर नंदन प्रभु हरि हरि वो। प्रभु जी पिछले लगभग 20 वर्षों से प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा कर रहे हैं। पहले ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में सेवा कर रहे थे, फिर उनको चंडीगढ़ में भेजा गया। चंडीगढ़ में उन्होंने यूथ प्रीचिंग में बहुत सुंदर सेवा की और आजकल चंडीगढ़ मंदिर में इसकॉन चंडीगढ़ में ऐसे वाइस प्रेसिडेंट सेवा कर रहे हैं। और प्रभु जी अक्रूर नंदन प्रभु जाने जाते हैं अपने बहुत ही सरल स्वभाव के लिए और बहुत ही सुंदर इनका व्यवहार है। और मेरे हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं पिछले कई वर्षों से। तो हमारा सौभाग्य है कि आज के शुभ दिन पे प्रभु जी हमारे बीच में है। तो कृपया करके प्रभु जी के संघ का पूरा लाभ उठाइए और आज प्रभु जी बताएंगे हमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर महाराज जी के विषय में। आप सबसे निवेदन है कि मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दें और ध्यान पूर्वक इनके संघ का लाभ उठाए। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आप सब भक्तों का संग प्राप्त हुआ, विशेषकर ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हमारे चंडीगढ़ में भी आते रहते हैं और हम सब भक्तों को उत्साहित करते हैं, खास करके भक्ति में, पुस्तक वितरण में, हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी देते हैं। बहुत आभारी हैं प्रभु जी का। तो ऑफकोर्स प्रभु जी के सामने प्रभु जी अगर प्रवचन देते तो ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होता, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का बारे में पता लगता, उनके जीवन चरित्र, उनका मूड के बारे में। फिर भी प्रभु जी की आज्ञा है तो मैं प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किताब में छोटा सा पढ़ते हैं, गौड़ीय वैष्णव चरितामृत। श्रीले ऐसी भक्ति विद्वान स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हम जानते हैं कि कोई भी वैष्णव आचार्य जो हैं उनके बारे में अगर हम श्रवण भी करते हैं, उनका जीवन चरित्र, हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ हो या हमारे शुद्धिकरण होता है। जैसे हम बात करते हैं कि भगवान की कथा, कृष्ण की कथा श्रवण करने से हमारा चेतना शुद्ध होता है। वास्तव में जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण और कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला और कृष्ण का परिकर, उनका पार्षद, वो अभिन्न है। केवल कृष्ण की लीला हम जब बात करते हैं तो उनकी भक्तों की लीला भी वो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो केवल जैसे हम भगवान की लीलाएं श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर नेताय भगवान की। तो ऐसे ऐसे महान आचार्य जो कि भगवान के नित्य पार्षद है, उनकी जीवन चरित्र के बारे में, उनकी लीला के बारे में, उनके गुण के बारे में भी श्रवण करके हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है, हमारा चेतना का शुद्धिकरण होता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे एक महान आचार्य हैं जो कि इस कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए या भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए अवतरित हुए हैं। हम जानते हैं कि भगवान ने इस भद्र जीवा जगत में जो भी जीवात्मा आए हैं, पापा जी बताते हैं कि इस भद्र जीवत में जो भी जीवात्मा आए, क्या है, टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, इस भौतिक जगत को प्रभुत्व जिताने के लिए भगवान की विद्रोह करके एक तरह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत में हर भद्र जीवात्मा को उद्धार के लिए शास्त्र दिया है। चैतन्य चैतन्यमृत में भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि माया मुग्ध जीवेर नाही श्रोता कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कृष्ण कैला वेद पुराण। जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण ने वेद पुराण दिया और साथ साथ स्वयं भी भगवान आते हैं। जैसे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि के हुए। और उसके बाद भी बहुत सारे आचार्य आते हैं, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो कि स्वयं कृष्ण है। भगवान ने तो भगवद गीता में ज्ञान दे दिया कि कैसे भक्त मतलब कैसे हम इस बद्ध जगत से उद्धार हो सकते हैं उनके शरणागत होके, लेकिन कैसे शरणागति का अभ्यास करना है उसको भी सिखाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसके बाद और भी महान आचार्य हैं जैसे कि षड़ गोस्वामी हैं, आगे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, और आगे इसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर भी आते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश को या उनका संदेश को सारा जगत में प्रचार करने के लिए प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक भी लिखा था लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स, जिसको उन्होंने प्रिंटिंग करके विश्व के सारे बड़े बड़े लाइब्रेरी में भी भेजा था उस किताब को, और 1896 में भेजा था। प्रभुपाद जी रिमार्क करते स्पेशल प्रभुपाद जी का जिस साल में आविर्भाव दिवस था उसी साल ही भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे इस ग्रंथों को सारे विश्व में भेजा था। और भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे बहुत सारे अपसंप्रदाय आगे चुके थे जो कि अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी तो बताते थे लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे। इवन वो लोग सारे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में भी लिप्त होते थे और वे संपर्क भी रखते थे भक्ति के नाम पे। उस समय वैष्णव शब्दों इवन जो बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग थे वो वैष्णव नाम सुनने पे वो सोचते थे या चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर समझते थे, मतलब कि ये तो लो क्लास लोग हैं, ये भक्ति के नाम पे और कुछ करते थे। तो इसी तरह से उस समय के साथ पतन हो चुका था। कोई भी अच्छा चीज हो समय के साथ खराब हो जाता है ना, अब समय काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान ने जो संदेश देते हैं वो भी भगवता ही भगवान बोलते हैं, स काल न महता योग नष्ट परंत। तो इसी तरह से बीच बीच में भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अपने किसी महान शुद्ध भक्त को भेजते हैं जो कि फिर असली धर्म का स्थापना करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी सारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे और शुद्ध चैतन्य महाप्रभु संदेश को स्थापना किया। उस समय ऐसी स्थिति खराब था कि श्री चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी ढूंढने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को कई साल लग गए कि एक ओरिजिनल, अभी तो हम चैतन्य चरितामृत इजीली ले सकते खरीद सकते हैं, तो उस समय एक कॉपी ढूंढने के लिए कई साल लग गया उनको एक चैतन्य चरितामृत कॉपी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर चिंतित थे कि आगे इस मिशन को कौन बढ़ाएगा, वो इसीलिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते थे मुझे ऐसे आपके अंश प्राप्त दीजिए जो कि इस श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश को शुद्ध वाणी को आगे प्रसार कर सके। तो इनका ये प्रार्थना था भगवान के, भगवान से प्रार्थना करते थे। तो बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का चौथे पुत्र के रूप में बिमला प्रसाद दत्त या श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव होता है इसी दिनों में 6 फरवरी 1874 को उनका आविर्भाव होता है जगन्नाथपुरी में। और उनका जगन्नाथ मंदिर से बहुत ही पास है, नजदीक आप लोगों ने देखा होगा भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव स्थली जहाँ पे आजकल गौड़ीय मठ है, वो जगह था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव हुआ था। उनके माता का नाम था भगवती देवी और बचपन में ही जब उनकी जो ज्योतिष है बच्चे को आगे गणना करते हैं हॉरोस्कोप देखते हैं तो उन्होंने देख के ही बड़े आश्चर्यचकित हुए थे, बोल रहे कि मेरे बहुत सारे बच्चों का हॉरोस्कोप देखा है लेकिन ये बच्चा स्पेशल है, इसमें तो एक महापुरुष का जो 32 लक्षण होते हैं वो सारे विद्यमान है। इवन बताया जाता है कि जब उनका जन्म हुआ, जो एक बच्चे का जन्म होता है इम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माता के साथ कनेक्ट, तो उनके गले में ऐसे जिनों की तरह पड़ा हुआ था, जनरली ऐसे नहीं होता, तो जिनों की तरह उनके शरीर में ऐसे लगा हुआ था। तो बचपन से ही उनका बहुत सारे लक्षण था कि ये जो बच्चा है बाद में जाके बहुत ही बड़ा महापुरुष बनेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करेंगे। इवन बचपन में भी जो 6 महीने के थे उस समय रथ यात्रा का समय था और लगभग 4 महीने के होंगे, 4 महीने के थे, फरवरी में उनका आविर्भाव हुआ था, रथ यात्रा जून में होता है, 4 महीने के थे। तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी के रथ उनके घर के सामने से गुजरता है तो रथ किसी कारण से 3 दिन तक रुका रहा वहां पे। तो जगन्नाथ जी भी उनके शुद्ध भक्त को दर्शन देना चाह रहे थे इसलिए रुके हुए। कभी कभी जगन्नाथ जी के रथ किसी किसी आप रथ यात्रा में रुक जाता है, किसी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो जगन्नाथ रथ 3 दिन तक रुक कर है तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने उनकी पत्नी भगवती देवी गुलाब जाके बच्चों को आशीर्वाद दिलाया जगन्नाथ जी का। तो भगवती देवी जगन बिमला प्रसाद दत्त या भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको रथ पे ले गए और जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। तो जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया तो जगन्नाथ जी का एक हार गिर गया और उनके शरीर पे गिरा। तो इससे इसको समझे जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में समझा इस बच्चे के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर की बात जब पता लगा तो उनमें मन में कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ ये वास्तव में जगन्नाथ जी का कृपा है कि जिस प्रार्थना मैंने किया था कि मुझे एक ऐसे पुत्र दीजिए जो कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को आगे बढ़ाएगा वो शायद यही बच्चा है। तो भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर बहुत ही डिटरमाइंड भी थे। एक ऐसे कथा भी आता जो 3-4 साल के थे छोटे उम्र के तो उनके घर में आम आया था, सीजन का पहली आम, हर सीजन गर्मियों के सीजन में आम होता है तो गर्मियों के सीजन में पहली बार आम आया था। तो उन्होंने एक आम अपने हाथ में ले लिया और उसे कि आम मैं खा लूंगा, खाने के प्रयास किया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको डांट दिया कि ये भगवान पहली आम आया घर में, ये पहले भगवान को ऑफर होना चाहिए, कोई भी चीजें भगवान को पहले ऑफर होना चाहिए, आप पहले कैसे खा सकते हो। तो जब इस बात को सुना, हालांकि वो बहुत छोटे बालक थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि आज से मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत भक्ति विद्वान स्वामी प्रभुपाद हमारी इस्कॉन प्रतिष्ठा आचार्य, वो बताते हैं कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोई भी बाद में भी आम अगर ऑफर करता था तो बोलते थे कि मैं तो अपराधी हूं, मैं आम नहीं खा सकता। तो पूरा जीवन भर उन्होंने कोई आम नहीं खाया। हालांकि छोटे बालक के लिए कोई अपराध नहीं होता है, 3-4 साल के बच्चे के लिए क्या अपराध है, या आम खा भी लिया तो उसको अपराध माना नहीं जाता, छोटे बच्चे को कोई गलती किया करता है तो उसे गलती नहीं माना जाता। वह लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से अपने आप को अपराधी समझा और पूरा डिटरमाइंड होके जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाया। एक आचार्य का भक्त होता है कि आचार्य का आचरण है, आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से सिखाता कि भक्ति कैसे दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, भक्ति के नियमों का। तो भी नहीं, इतना छोटी सी घटना था लेकिन उतना बड़ी दृढ़तापूर्वक अपने आचरण से दिखा रहे थे कि कैसे डिटरमाइन होना चाहिए भक्ति में। और आगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बचपन से भी बहुत मेधावी थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, जो भी एक बार पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। वो स्कूल में जाते पढ़ाई पढ़ते थे थोड़ा बहुत और बाकी घर में आके वो घर में कोई पढ़ाई नहीं करते थे, घर में आके वो भक्ति विनोद ठाकुर की जो रचनाएं हैं उसको पढ़ा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे पुस्तकें लिखे थे तो उसको पढ़ते थे या जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पुस्तकों को पढ़ते थे। और इतने विद्वान थे वो हो गए थे बाद में, वो संस्कृत का अध्ययन कर किया, ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया, वो बहुत ही पारंगत बन गए थे उसे। इवन उनसे कोई भी व्यक्ति डिबेट करने के लिए भी डरते थे, वो जिससे भी डिबेट करते थे तर्क करते थे वो हार जाता, कितना बड़ा, कई बार भी बड़े बड़े पंडितों को भी, संस्कृत के पंडितों को भी हरा दिया उन्होंने, लोग उनसे डरते थे तर्क करने में। जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में आता है, चैतन्य महाप्रभु भी तर्क करने में बहुत ही प्रवीण, सब लोग डरते थे चैतन्य महाप्रभु से तर्क करने में। वो कोई भी सिद्धांत को लेते थे, दूसरे के सामने प्रस्तुत करते थे, वो व्यक्ति उसको से उस सिद्धांत में हरा देते थे पूरी, वो एक मत का प्रस्तुत, फिर जो उन्होंने बोला होता है उसको फिर गलत साबित करके दूसरा एक तर्क प्रस्तुत कर लेते, बहुत ही विद्वान थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से भी कोई व्यक्ति तर्क करने से सब लोग डरते थे, कोई तर्क नहीं करता था, इतने विद्वान थे वो। और वो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज से रिजिग्नेशन दे देते, पढ़ाई बंद कर देते। वो सोचते हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करूंगा लोग मुझे बहुत विद्वान समझेंगे, और फिर मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बाध्य करेंगे, अच्छा है कि मैं अपने आप को मूर्ख की तरह रखता हूं ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरी भक्ति में। तो इसीलिए उन्होंने कॉलेज से भी पढ़ाई बंद कर दिया। हालांकि उनके जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनके बड़े प्रोत्साहन करते थे क्योंकि बहुत ही मेधावी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने लगा कि इससे अच्छा है कि मैं कोई छोटा मोटा नौकरी कर लूं अपने जीविका के लिए, मुझे विद्वान नहीं बनना है। हालांकि वो उससे पहले भी कई सारे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी अनेक सारे मैगजीन्स में लेख लिखते थे, और सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारी किताब लिखा था, खास करके सूर्य सिद्धांत के ऊपर किताब लिखा था, बहुत ही ऑथोरिटेटिव बुक है जो कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बहुत ज्यादा विद्वान था। प्रभुपाद जी बताते थे कि भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे, जीवंत ज्ञान कोश। उनके किसी भी विषय वस्तु के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और कभी भी पूछ लीजिए, वो उसको बता सकते थे, उनका इतना ज्ञान था, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया उनको बुलाया जाता। और बचपन से ही उनको श्रीमद् भगवद गीता का समस्त 700 श्लोक याद थे, कंठस्थ थे पूरी तरह से, भगवद गीता पे, भागवतम, सब कुछ उनको ज्ञान था, तो इतना वो विद्वान थे। लेकिन साथ साथ वो उस समय जो भक्ति के नाम पे जो लोग गलत चीजें कर रहे थे या गलत सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे उसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, इसलिए उनको बुलाता, सिंह गुरु भी बुलाता है, लायन गुरु है ना। इवन वो जो बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर किसी गली में जा रहे हैं, सामने से कोई मायावादी आ रहा है तो रास्ता चेंज कर देता था वो डर के मारे, क्योंकि उसको पकड़ के कुछ भी बोल सकते थे, तो सब डरते थे, सिंह गुरु के नाम पे वो विख्यात थे। क्योंकि इवन जब वो इवन संन्यास लेने से पहले जब वो वहां पे थे, जगन्नाथपुरी में थे, वहां पे और एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था राधा रमन बाबा जी, वो भी वैष्णव थे, चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर्स थे, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का उनके अच्छा संपर्क था। लेकिन बाद में संपर्क खराब हो जाता है, कारण क्योंकि उन्होंने कुछ अपसिद्धांत घुसा दिया अपने प्रचार, उन्होंने एक मंत्र का अपने आप ही रचना कर लिया, उन्होंने बोला कि चैतन्य जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको जोर जोर से नहीं जपना चाहिए। उन्होंने मंत्र शुरू किया, जप निताय गौर राधे श्याम, सॉरी भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, तो कि आप निताय गौर राधे श्याम इसका जोर से कीर्तन करो और हरे कृष्ण महामंत्र जो है मन में धीरे धीरे करना है, उसको जोर से नहीं कीर्तन कर सकते। ये भी आजकल भी है ऐसे लोग, आपको कभी जाएंगे तो उड़ीसा में बंगाल में ऐसे भजन करते हुए दिख जाएंगे, जप भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। तो इसी तरह से उन्होंने उसका प्रचार करने लगे, जबकि श्रील रूप गोस्वामी भी अपनी पुस्तक में लिखे कि चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, है ना। और साथ साथ उन्होंने एक सखी बेटी, सखी बेकी, क्योंकि अपने एक शिष्य उनको एक सखी के रूप में, जो सखी बेकी अपसंप्रदाय है, उसका भी शुरुआत किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाया, राधा रमन बाबा जी को, कि ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो फिर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने अनेक प्रवचनों में ये में उनको बड़ा जोरदार खंडन करते थे, उन्होंने प्रचार करने लगे। तो ऐसी स्थिति आ गया जगन्नाथपुरी में, कुछ लोग समर्थन करते थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की बात को, कुछ लोग आउट ऑफ सेंटिमेंट राधा रमन बाबा जी को समर्थन कर रहे थे। बहुत ही टेंस सिचुएशन हो गया। तो इतना वर्णन आता है कि इतना ज्यादा समस्या हो गया था। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि समस्या ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोला कि थोड़े दिन के लिए आप पूरी से बाहर चले जाओ, नहीं तो, क्योंकि लोकल सेंटिमेंट ज्यादा उस बाबा जी की तरफ था सेंटिमेंटली, क्योंकि बाबा जी थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसमें कोई सन्यासी नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो एनी हाउ, तो बहुत ही जो भी अपसिद्धांत है उसको सहन नहीं करते थे। इनके प्रणाम मंत्र भी अपसिद्धांत ध्वांत हरिणे, सारे अपसिद्धांत को ध्वस्त करने वाले थे। वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे अपने प्रीचिंग में दोनों चीजें। कभी कभी लोग, साधारण लोग प्रचार कैसे करते हैं कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, अपना सिद्धांत प्रस्तुत करना है, लेकिन दूसरे को निंदा नहीं करना चाहिए। बट लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का, प्रभुपाद जी बोलते थे, उनका प्रिंसिपल था, प्रीचिंग टेक्निक था, चॉपिंग टेक्निक, है ना। को दूसरे को सिद्धांत को भी खंडन करते, जो अपसिद्धांत था, मायावादी सिद्धांत हो या दूसरा जो चैतन्य महाप्रभु के नाम पे जो अपसिद्धांत हो, सखी बेटी, आउल बाउल, बहुत सारे कोई भी सिद्धांत को उसको विरोध भी करते थे और सही सिद्धांत को भी प्रस्तुत करते थे। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे। वो भी प्रभुपाद जी के हम लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी भी कहीं भी थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मायावाद सिद्धांत को काटने के, तुरंत मायावाद सिद्धांत को विरोध करते, या कैसे ऐसे कोई अपर सिद्धांत है उसको, तो तुरंत उसको काटते थे और फिर असली सिद्धांत क्या है उसको स्थापित करते थे। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे जुहू टेम्पल के पास, जुहू में बीच में, तो वहां पे आपने सुना एक डॉक्टर पटेल आते थे प्रभुपाद से डिस्कस करने के लिए, कभी कभी हॉट आर्गुमेंट्स भी होता था। प्रभुपाद उन एक बार वो डॉक्टर पटेल जो है किसी तथाकथित जो पॉपुलर गुरु है उनके बारे में कुछ बोलना शुरू किया कि ये ऐसे है वैसे है, तो प्रभुपाद ने तुरंत उनकी निंदा करना शुरू किया, मतलब उनकी जो गलतियां हैं वो बताना शुरू किया कि ये कैसे ठीक नहीं है, वो गुरु सही गुरु नहीं है। तो डॉक्टर पटेल, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि स्वामी प्रभुपाद जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वही वो भी साधु हैं। तो प्रभुपाद जी ने और ज्यादा तर्क देने लगे, तो ये डॉक्टर पटेल भी बहुत गुस्से हो गए, वो भी जोर जोर से बोलने लगे, प्रभुपाद जी भी जोर से बोलने लगे, मतलब एक तरह से झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर डॉक्टर पटेल के कुछ मित्र थे, उनको ले गए खींच के आज के वापस ले गए। और उसके बाद डॉक्टर पटेल डेली आते थे प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में साथ में, वो आना बंद कर दिया। फिर दो दिन बाद वो मॉर्निंग वॉक ही आना बंद कर दिया। दो दिन बाद फिर वो मॉर्निंग वॉक में आ रहे थे, प्रभुपाद जी इधर से एक तरफ से जा रहे थे और डॉक्टर पटेल सामने से आ रहे थे मॉर्निंग वॉक में। तो वो खुद ही बताते हैं बाद में कि पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे को अंदर से इच्छा हुआ, वो आके प्रभुपाद जी से प्रणाम किया और बोले कि प्रभुपाद जी आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको बुरा भुला थोड़ा बोल दिया। हालांकि हमें बचपन से हमें ऐसी ट्रेनिंग मिला कि सभी संतों को सम्मान देने के लिए, तो हम सब संतों को सम्मान देते हैं। और प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि हमारा कर्तव्य यह है कि कौन सही संत है कौन सही संत नहीं आपको बताना, कौन सही संत नहीं है आपको बताना, हमारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कोई भी अपसंप्रदाय या कोई भी अपसिद्धांत को काटने में, इसी तरह से भक्ति, ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का मूड था कि अपसिद्धांत को कभी भी सहन नहीं कर सकते, वेरी स्ट्रांग थे उसमें. इवन जैसे कि और भी एक घटना आता है कि जब भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर के समय, इस समय बहुत ज्यादा था ये कि ब्राह्मण जो थे, जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, उनका मत था कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है वो गुरु बनने के अधिकारी नहीं है, वो दीक्षा नहीं दे सकता है, या अर्चा विग्रह का पूजन या शालिग्राम शिला का पूजन नहीं कर सकता. शालिग्राम शिला का पूजन वही व्यक्ति कर सकता है जो कि ब्राह्मण की घर में जन्म लिया है, और गुरु भी वही बन सकता है. इवन वो उत्तम वैष्णव भी क्यों ना हो, महान उत्तम वैष्णव भी क्यों ना हो, लेकिन वो गुरु बनने के योग्य नहीं, आचार्य नहीं बन सकता, ऐसे उनका मानना था. लेकिन शास्त्र के आधार पर तो ऐसे नहीं है. हम जानते हैं चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन आता है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है ना. तो उस समय उस स्मार्ट ब्राह्मण ने एक सभा बुलाया कि ब्राह्मण और वैष्णव, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए बहुत बड़ा सभा बुलाया मेदिनीपुर में, और उसमें बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, और भक्ति विनोद ठाकुर को भी इनविटेशन आया था वैष्णवों की. तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय बहुत ज्यादा बीमार थे, वो बेड रिडन थे, मतलब वो जा नहीं सकते थे, तो बहुत दुखी थे कि सोच रहे थे कौन जाए, और ऐसे कोई वैष्णव है जो कि जाके इन लोगों का सामना करे. तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उस समय उन्होंने अपने पिता से, भक्ति विनोद ठाकुर से परमिशन लेके मेदिनीपुर जाते हैं, और उस ब्राह्मणों की सभा में रिप्रेजेंट करते हैं वैष्णवों का. तो उनको जो बोलने के लिए बोला जाता है, वो तो पहले ब्राह्मणों की बहुत गुणगान करते हैं कि ब्राह्मण कितना महान है, शास्त्र से इतने सारे कोटेशन लेते हैं जो कि वहां पर जो ब्राह्मण भी बैठे होते खुश हो जाते हैं, वाह हम कितने महान है, हमें भी नहीं पता था इतना तो हमें भी नहीं पता था कि हम कितना महान है जिसने इतना बता दिया. फिर उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि वैष्णव कौन है, और वैष्णव जो कैसे ब्राह्मण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है. पूरा शास्त्र के आधार पे, शास्त्र के सिद्धांत के आधार पे उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये वैष्णव जो है ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, और किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं था उसके पीछे आगे. कोई भी कुछ छोटा मोटा कुछ आर्गुमेंट दिया तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर तो बहुत ही जल्दी उसको डिफीट कर दिया इतना, और उन्होंने पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि वैष्णव जो है श्रेष्ठ है, और इसके लिए कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेना कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र के आधार पर. ये तो हर जगह पे हम सुनते रहे, भगवद गीता में भी है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, ऐसे बहुत सारे जगह पे. तो उन्होंने बहुत सारे, केवल भगवद गीता भागवतम नहीं, बहुत से अन्य शास्त्रों के आधार पर भी कि उन्होंने प्रमाणित कर दिया. और वहां पे वर्णन आता है, वहां पे जो पब्लिक आए थे वो इतने खुश हो गए कि सब लोग, तो सभा के बाद सब लोग जो है उनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर का चरण छूने के लिए सब आगे बढ़ने लगे. इतना भीड़ हो गया कि बहुत ही धक्का मुक्का शुरू हो गया. इसमें बुक आता ना, ए रे वो विष्णु, उसमें लिखा है. तो फिर वहां पे जो गार्ड थे, चौकीदार थे, उन्होंने सोचा कि तो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो रहा है. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ले गए, जबरदस्ती उनका पैर पकड़ा और पानी में डुबा लिया. कोई वैष्णव अपना चरण धूली तो देना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पानी में डुबाया और सब लोगों को शांत करने के लिए उस चरण में सबको बांध दिया. तो इतना लोग प्रभावित हुए उनके उस प्रेजेंटेशन से, और सब लोग इतना प्रसन्न हुए. जब शुद्ध संदेश का कोई प्रस्तुत करता है तो लोग निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं. तो फिर आगे हम जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर आगे फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं कैसे भक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से। हालांकि बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर उनके भक्ति का शिक्षा दिया था, उनको हरे कृष्ण महामंत्र नृसिंह मंत्र जप करने के लिए दिया था और विन कुर्म डीटी दिया था पूजा करने के लिए, अर्चा विग्रह का पूजा करने के लिए भी दिया था। लेकिन फॉर्मल इनिशिएशन एटिकेट के वाइज कि पिता जो है पुत्र को दीक्षा नहीं देते फॉर्मली, तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो कि एक महान वैष्णव है परमहंस वैष्णव है वो, लेकिन वो दीक्षा किसी नहीं देते, किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, वो अपने भजन में ही आनंद लेते थे। सो उनके पास भेजते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां पे जाते हैं तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज तो सीधे सीधे मना कर देते, बोलते हैं नहीं नहीं मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, तुम तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, विद्वान हो, मजिस्ट्रेट के बेटे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज तो अंगूठा छापते, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, लेकिन थे महान शुद्ध वैष्णव, उनके सारे शास्त्रों का ज्ञान था, तो लेकिन वो मना करते हैं अपने विनम्रता के कारण। लेकिन जब बहुत प्रार्थना करते हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर या उस समय के जो नाम था विमला प्रसाद दत्त, तो उन्होंने बोलते ठीक है मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा दीक्षा देना है कि नहीं देना, वरांग महाप्रभु से पूछूंगा। तो ठीक है चले आते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और फिर कुछ दिन बाद वापस आते हैं पूछते हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गौर कृष्णदास बाबा मैं पूछना भूल गया, मैं पूछा नहीं गौरांग महाप्रभु से, पूछ के बताता हूँ कोई बात नहीं। तो फिर से तीसरी बार फिर आते हैं तो फिर बोलते कि मैंने पूछा था, गौरांग महाप्रभु ने कुछ जवाब नहीं दिया मना कर दिया दीक्षा नहीं दे सकता। तो इस बार विमला प्रसाद दत्त या भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है कि करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी हुआ, तो उन्होंने बोले कि मरे होगा कृपा नहीं करेंगे मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा गंगा नदी में कूद के। तब जब इस तरह से उन्होंने उनका डिटर्मिनेशन देखा गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज, तो उनका हृदय पिघल गया और फिर उन्होंने दीक्षा देने के लिए राजी हो गए और उनको उन्होंने दीक्षा नाम दिया बार्षभानवी देवी दैत दास, है ना। बार्षभानवी देवी मतलब राधा रानी का नाम है, वृषभानु के उनके पुत्री, तो बार्षभानवी देवी दैत, दैत मतलब उनका पति भगवान कृष्ण, तो उनके बार्षभानवी देवी दैत दास इस तरह से उनको दीक्षित नाम दिया। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर बाद में बहुत ही कड़ी तपस्या भी करते हैं प्रचार करने से पहले, उन्होंने पढ़ लेते हैं कि हरिदास ठाकुर के परचिन्हों का अनुसरण करते हुए वो दिन में 300,000 नाम जप कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 1 बिलियन नेम्स मतलब 100 करोड़ नाम जप करने की प्रतिज्ञा लिया था, तो 100 करोड़ नाम वो दिन में 300,000 नाम जप करते थे जो कि उनको पूरा करने के लिए 9 साल लगे। 1905 में उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था, तो उन्होंने 9 साल तक नवद्वीप में रह के डेली 300,000 नाम जप करते थे और ऐसे 100 करोड़ नाम उन्होंने जप किया। और उसके बाद उन्होंने फिर प्रचार कार्य भी शुरू किया, जैसे कि गौड़ीय मठ का स्थापना किया और गौड़ीय मठ स्थापना करके पूरा भारतवर्ष में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ स्थापना किया, इवन भारत के बाहर भी बर्मा उधर जर्मनी इंग्लैंड अलग अलग जब विदेशों में भी उन्होंने गौड़ीय मठ का स्थापना किया और पूरा भारत में और भारत के बाहर भी कुछ जगहों में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बहुत सारे भक्त को जोड़ा। इवन और उनका जो विशेष योगदान है उन्हें बोलते थे कि पुस्तक वितरण के ऊपर उसको बोलते थे बृहत मृदंग, बृहत मृदंग, उन्होंने तीन प्रिंटिंग प्रेस था उनका, ख्याल से थे, कलकत्ता, नवद्वीप और मद्रास। वो तीन जगह में वो सारे जो भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ है और भी जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों का ग्रंथ है उसको वो प्रकाशित करते थे और वितरित करते थे। उन्होंने मैगजीन भी निकाला था, नदिया प्रकाश मैगजीन भी निकाला था, इवन एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, न्यूज़पेपर का नाम था सर नदिया प्रकाश, आपको लिखा था। यदि उन्होंने जब उन्होंने उनसे प्रश्न किया गया कि भाई नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तो श्रील सरस्वती ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर पांच दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में उनकी अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। तो भौतिक जगत की तुलना में तो आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ा है ना, और वहां पे भगवान की जो लीला है नित्य नवीन है और असीम है, तो उसके बारे में तो हम हर प्रतिक्षण एक एक न्यूज पेपर निकाल सकते हैं। ये साधारण नगर में बोल रहे उस समय पांच, अभी तो कितने निकलता है एक नगर में, निकल सकता है तो प्रतिक्षण निकल सकता है समाचार पत्र, ऐसे उनकी भावना था। तो उन्होंने और इस पुस्तक वितरण को बहुत ही महत्व देते थे, बताया था कि कोई भी भक्त जाके एक कुछ मैगजीन भी बेच के आ जाता था तो उसको देख के बहुत प्रसन्न होते थे कि भगवान का संदेश उसने प्रचार करके आया, तो उसको वो बृहद मृदंग बोलते थे कि साधारण जो मृदंग है वो थोड़े से दूर तक आवाज जाएगा लेकिन इसका आवाज दूर दूर तक जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी भी जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर से राधा कुंड में मिले थे तो जमीन में उन्होंने एक मृदंग का चित्र अंकित किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, और प्रभुपाद जी को समझाया कि ये मृदंग जो है मृदंग के ऐसा आवाज होता है, बृहद मृदंग है, वो क्या है प्रिंटिंग प्रेस है, और तुम्हें जब भी धन प्राप्त हो कि पुस्तक का प्रकाशित करिए और उसको वितरित करिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो आदेश था उनके गुरु महाराज का उसको बहुत ही गंभीरता से लिए, और हम जानते हैं कि ये कैसे है, प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का प्रकाशित किया, खुद लिखा भी उसके ऊपर तात्पर्य, प्रकाशित किया और अपने शिष्यों के माध्यम से उसका वितरित किया, अभी भी वितरित कर रहे हैं, है ना भक्त, खास करके पंजाबी भाग में डिवोटी काफी ज्यादा मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 2.5 लाख टारगेट है जो हर साल कर रहे हैं। तो इस तरह से हर वर्ष जो गीत पुस्तक वितरण बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जितना हम पुस्तकों का वितरण करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा। तो ये जो इंस्पिरेशन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लिया था कि पुस्तक वितरण जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य है और हमारे सारे आचार्यों को बहुत ज्यादा प्रिय है, केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रिय नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर को भी बहुत प्रिय था, और उससे पहले भी हम जानते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी ने भी जो गोस्वामी ग्रंथ का प्रचार करने के लिए तीन महान आचार्यों को भेजा था, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। तो ये पुस्तक वितरण कार्य इतना महत्वपूर्ण है, हमारे जो आचार्यों को इतना प्रिय, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय, इसलिए भगवद्गीता के अंत में वो लिखते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ये सारे आचार्यों का इच्छा है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी उसी परंपरा में उन्होंने उसको अलग, उस समय उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस होता नहीं था, तो इसी तरह से पहले अगर बुक छापना होता था, प्रिंट प्रचार करना होता तो हाथ से कॉपी करना होता था, फिर उसको लिख के आगे देना होता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, तो उसको उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रचार, उसको उन्होंने बृहत मृदंग का नाम दे के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। और भी बहुत ही इनोवेटिव थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने के लिए। वो अपने सन्यासी भक्तों को विदेश में भेजा, उससे पहले कोई विदेश में नहीं जाता था प्रचार करने के लिए। और उन्हें सन्यासी शिष्य को सिली हुई कपड़े भी पहनने की परमिशन दिया ताकि, और प्रचार में जो आधुनिक उपकरण है, कार है या युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए उन्होंने प्रचार कार्य को बढ़ाया। इवन बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स जैसे कि डायरोमाज इत्यादि प्रचार कार्य में यूज करते थे कि ताकि लोगों आए और भगवान की लीलाओं को दर्शन करें, भक्ति के साथ जुड़े। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में बहुत कुछ है, उन्होंने कैसे प्रचार किया, कैसे खाली जब भगवान के नाम का कोई प्रचार करता है साथ साथ बहुत विरोध भी आता है। इवन प्रभुपाद जी भी जो प्रचार करते थे बहुत सारे विरोधी तत्व आते थे, विरोध करते थे, उनके समय पर भी बहुत सारे विरोध होते, जहाँ खास करके विरोध जो जाति गोसाई या स्मार्ट ब्राह्मण उनके तरफ से आता था। इवन उनको लाइफ रिस्क भी था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार नवदीप का जो इंस्पेक्टर है भक्ति सिद्धांत ठाकुर से आके बताया कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको ऊपर मारना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं बहुत सारे रिस्क होते हुए भी, सारे प्रकार के रिस्क को लेते के लिए हुए भी और भगवान के नाम का प्रचार करने पीछे नहीं उठते। कितने भी कोई समस्या क्यों ना हो वो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1936 में उन्होंने आज के दिन, उस समय तो 31 दिसंबर 1936 था उस समय जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, 31 दिसंबर 1936 था, तो उन्हें कलकत्ता में अपना शरीर त्याग किया। यहाँ भी बताया कि गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रील सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में सेवारत है। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में है। हरे कृष्ण। ऐसे तो बहुत सारे पास टाइम है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, बहुत सारे पुस्तक है, एरे और विष्णु और भी बहुत सारे लेक्चर्स में सुनने को मिलता है कैसे उन्होंने प्रचार किया, कैसे उनका जीवन चरित्र है। तो संक्षेप में जितना हो सका मैंने वर्णन किया। किसी का कोई कमेंट है, प्रश्न है तो पूछ सकते, यानी कोई कॉमेंट्स हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभा दिवस की, श्रील प्रभुपाद की।